ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों, हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवतम क्लास में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंध से, अध्याय है 10, जिसका शीर्षक है देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम। और श्लोक संख्या रही है हम लोग 41 से लेकर 57 तक, और ये अध्याय इतना आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो 41 से लेकर के 55 तक मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं, उसका 56 जो है वो बोर्ड पर, राइट? या ओके, तो 41 से लेकर के 55 तक मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं। 41 वर्ष उसकी ट्रांसलेशन सुनाते हैं। महाराज बलि ने तब 10 बाणों से इंद्र पर तथा 3 बाणों से इंद्र के वाहन ऐरावत पर वार किया। उन्होंने 4 बाणों से ऐरावत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया और 1 बाण से उसके चालक पर। वाहन उन घुड़सवारों का सूचक है जो हाथी के पैरों की रक्षा कर रहे थे। सैन्य व्यवस्था के अनुसार सेनापति को ले जाने वाले हाथी के पांवों की भी रक्षा की जाती थी। 42 श्लोक। इसके पूर्व की बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे। बाणों को चलाने में पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण भल नामक बाण से उसे काट डाला। 43 श्लोक। जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा तो वह अपना क्रोध रोक ना सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार ग्रहण किया जो महान अग्नि पुंज की भांति ज्वलित हो रहा था, किंतु इंद्र ने इसे बलि के हाथ से छूटने के पूर्व ही खंड खंड कर दिया। 44 श्लोक। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला, ब्रास, तोमर, दृष्टि तथा अन्य हथियार चलाए, किंतु वे जो भी हथियार लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते थे। 45 श्लोक। हे राजन, तब बलि महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। 46 श्लोक। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष गिरने लगे। उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसे तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड खंड होकर गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर हो गए। 47 श्लोक। देवताओं ने सैनिकों पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, सुअर तथा बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। 48। हे राजन, तब कई 100 मानव भक्षी नर और मादा असुर जो पूर्णतः नग्न थे और अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, काट डालो, छेद डालो के नारे लगाते हुए प्रकट हुए। 49। तब आकाश प्रबल वायु से प्रताड़ित घनघोर घटाएं प्रकट हो गई, हो आई। वह गंभीर गर्जना करती हुई जलते कोयलों के अंगारे बरसाने लगी। 50। महाराज बलि द्वारा उत्पन्न की गई अत्यंत संहारक अग्नि देवताओं के सभी सैनिकों को चलाने लगी। ये अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ उस सामवर्तक अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होती है। 51 श्लोक। तत्पश्चात हवाओं के प्रचंड झकोरों से क्षुब्ध समुद्री लहरें तथा भंवर सबकी आंखों के सामने भीषण बाण के रूप में चारों ओर प्रकट हो गए। 52 श्लोक। जब ऐसे मायावी कार्यों के दक्ष अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था तो देवताओं के सैनिक उद्विग्न हो गए। 53 श्लोक। हे राजन, जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निराकरण कर पाने का कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया और वे तुरंत प्रकट हो गए। 54 श्लोक। नव विकसित कमल की पंखुड़ी सदृश आंखों वाले भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे और गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल फैलाए हुए थे। वह पीत वस्त्र धारण किए कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी से सुसज्जित एवं अमूल्य मुकुट तथा कुंडल पहने अपनी आठों भुजाओं में विविध आयुध धारण किए देवताओं को दृष्टिगोचर हुए। 55वां श्लोक। जिस प्रकार स्वप्न देखे जाने वाले के जगते ही स्वप्न के भय दूर हो जाते हैं, उसी तरह युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही उनकी दिव्य शक्ति से असुरों की जादूगरी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। निस्संदेह भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकट से मुक्त हो जाता है। आप ये 56वां श्लोक है जिसको भी हम पढ़ते हैं। दृष्ट्वा मिधे गरुड़वामी भारी वाहां आविध्य शूल महीनोदत काल नेमिहि। तल्लीलया गरुड़ मूर्धन पतत गृहीत्वा तेनाह नृपा सवाहमरिं त्रयधिशाम्। श्रद्धा धन्यवाद तत्पर श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्रद्धा दृष्ट्वा देखकर मृधे युद्ध स्थल में गरुड़वाहम गरुड़ द्वारा ले जाए गए भगवान इभारी वाहम महान सिंह द्वारा ले गया असुर आविध्यां मापर शूलम शूल को अहिनो उस पर छोड़ा अथम इस प्रकार काल नेमी असुर ने तत् भगवान पर असुर द्वारा ऐसा प्रहार लीलया आसानी से गरुड़ मूर्धना गरुड़ के सर पर पतत गिरते हुए गृहीत्वा तुरंत सहज रूप से पकड़कर तेना उसी हथियार से अहनत मार डाला। नृपा हे राजा सवाहम अपने वाहन समेत अरिम शत्रु को त्रिअधीशः तीनों लोकों के स्वामी भगवान ने अनुवाद। हे राजन जब सिंह पर आरूढ़ काल निमी दैत्य ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ भगवान युद्ध क्षेत्र में है तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया और उसे गरुड़ के सिर पर चलाया, किंतु तीनों लोकों के स्वामी भगवान हरि ने तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से उसका शत्रु काल निमी को अपने वाहन सिंह समेत मार डाला। तात्पर्य इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य कहते हैं काल नेमाद्यः सर्वे कारणा निहिता अपि शुक्रेणो जीविता संता पुनस्तनैव पातितः। काल नेमी तथा अन्य सारे असुर भगवान हरि द्वारा मार डाले गए और जब असुरों को उनके गुरु शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया तो भगवान ने उन्हें पुनः मार डाला। और इस 9वां श्लोक है, इसका अनुवाद इस प्रकार से है। तत्पश्चात भगवान ने माली तथा सुमाली नामक दो शक्तिमान असुरों को मार डाला। उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। तब एक अन्य असुर माल्यवान ने भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपनी नुकीली गदा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण किया, किंतु आदि पुरुष भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करते हुए उस शत्रु के सिर को भी काट दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विश्वपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा है। तो ये प्रसंग जो है, हम सोच सकते हैं भला इस प्रकार के प्रसंग श्रीमद् भागवत में क्यों, भाई जो व्यक्ति सात दिन में जाने वाला है उसको तो सिर्फ क्या करना चाहिए, हरी कथाएं मीठी मीठी कथाएं होनी चाहिए, युद्ध संग्राम वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसी बातें आती हैं भाई। और कई वंशों के वर्णन चलते हैं, वंशों के वर्णन चलते हैं, 21 पीढ़ियां चल जाती है उसके अंदर, ऐसा क्यों होता है भला। तो वास्तव में सारी चीजें जो है एक चीज ऊपर केंद्रित है श्रीमद् भागवत में, वो है कि अल्टीमेटली हुआ क्या, कृष्ण की शरण में गए, भगवान की शरण में गए। तो भगवान की शरण बताने के लिए ये सारा बताना पड़ता है, कितना कुछ हो जाए ना, तो उसमें अगर शरण अगर किसी की है तो ना फिर वो कृष्ण की होनी चाहिए। जैसे कि एक राधाष्टमी का लेक्चर है श्री प्रभुपाद जी का, तो जो है भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करना, तो मतलब सुनने वाले को डाउट हो जाए कि शायद जन्माष्टमी का लेक्चर देखिए प्रभुपाद जी का, और फिर लेक्चर के आखिर में प्रभुपाद जी बोलते हैं और ये कृष्ण जो है ना ये श्रीमती राधा रानी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और इस तरह से राधाष्टमी का लेक्चर दिया प्रभुपाद जी ने, कृष्ण का गुणगान करके बताया कि ये सारे गुण वाले जो कृष्ण है ना ये वशीभूत है श्रीमती राधा रानी की भक्ति के आगे। तो इसीलिए जो है कई बार बहुत कुछ बताना होता है ये बताने के लिए कि वास्तव में सब कुछ अल्टीमेटली जो कल्मिनेट होता है, अंत होता है, जिसका निष्कर्ष है हर वस्तु का, हर सिद्धांत का, वो है वास्तव में श्री कृष्ण के शरण में जाना। तो इसलिए बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ है, मतलब बड़े बड़े देवी देवता इसमें सम्मिलित हैं और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ है। तो जब बहुत भयंकर युद्ध हुआ तो अल्टीमेटली जब दिक्कत आई तो फिर क्या क्या देवताओं ने, उन्हें प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण को, भगवान से प्रार्थना की, भगवान हरि की प्रार्थना की कि भगवान प्लीज हरि आप आ जाइए, ओ हरि जल्दी जल्दी आ जाइए क्योंकि हम बहुत समस्या में। अब हमने भक्ति के सामने सिंधु में एक श्लोक पढ़ा है जो कि है अन्य अभिलाषता शून्यम, अन्य अभिलाषता शून्यम, यानी कि भक्ति अंदर जो है कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए सिवा एक इच्छा की, वो है कृष्ण की प्रसन्नता, बस यही इच्छा होनी चाहिए, और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए भक्ति। नहीं, कभी कभी जो है भक्त रक्षा की भी प्रार्थना कर बैठता है भगवान कि हे प्रभु रक्षा करें। फॉर एग्जाम्पल सामने से अगर कोई गाड़ी आया कि आप ड्राइव कर रहे होते हैं, कृष्णा चिल्ला दी कि भाई कृष्ण भाई रक्षा करो, और ये नहीं कृष्णा आपकी प्रसन्नता, ये भाव थोड़ी है भाई कृष्णा रक्षा। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने लिखा अन्य अभिलाष शून्यम, श्री रूप गोस्वामी ने लिखा अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि डेलिबरेटली कॉन्शियसली हमारे अंदर बहुत ही इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फॉर इंस्टेंस फॉर अ टाइम भी अगर इच्छा हुई कि रक्षा के लिए, और रक्षा इसलिए ताकि रक्षा इसलिए प्रभु की आपकी सेवा होती रहे, तो ऐसे में अगर रक्षा की भी अगर कोई प्रार्थना करता है तो वो शुद्ध भक्ति में काउंट हो जाता है। हालांकि देखा जाए टेक्निकली तो वो शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने शुद्ध भक्ति को इतना एक्सक्लूसिव भी नहीं रखा और इतना और इंक्लूसिव भी नहीं रखा, तो बड़ा ही सही मार्जिन सेट किया है रूप गोस्वामी जी ने कि अनाभिलाषिता शून्य, नॉट जस्ट अन्याभिलाष शून्य, अन्याभिलाष शून्य नहीं, अन्याभिलाषिता शून्य, यानी कि डेलिबरेटली कॉन्शियसली बड़े ही विवेक मतलब जान बूझ करके हमें भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर क्वारेंसर सभी ऐसा हुआ कि रक्षा की आकांक्षा की अगर, तो वो भी है वो शुद्ध भक्ति में काउंट होता है। तो अक्सर देवी देवता जो होते हैं, सारे देवी देवता तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो ये तो प्रार्थना ऐसे करते हैं कि भाई अल्टीमेटली देखो भगवान है, इस बात में उनको पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करने वाले, और ये विश्वास भक्तों में भी होना चाहिए। अगर हमें ये विश्वास है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे तो हमारा बहुत ही बुरा हाल है, तो फिर सकाम भक्त भी नहीं है वास्तव में। जो सकाम भक्त होता है उसमें भी कम से कम बेसिक ये विश्वास होता है कि कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, और भगवान तो इतने दयालु हैं कि अगर कोई जाने अनजाने में भी अगर भगवान की शरण चला जाता है, प्रार्थना करता है प्रभु अब देख लो आप, अब कर दो तो अच्छा है, नहीं करो तो फिर ठीक है जो है, उसको पूरा विश्वास है। इवन अगर कैसी भी भावना में किसी भी स्थिति में अगर कोई भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। जैसे जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो बीच में चिड़िया का एक घोंसला था, और चिड़िया का जो घोंसला था उसमें चिड़िया के अंडे दिए हुए थे। अब चिड़िया ने जो अंडे दिए थे उसने देखा कि ना दोनों तरफ बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी है, इस तरह भी बहुत भीड़ इकट्ठी, इस तरह भी बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी है, उसको लगा कि ना शायद ये अंडे ना कुचल रहे हैं लोग। तो अब शंख बजे, पहले इस जगह से शंख बजा, फिर यहां से शंख बजा, यहां शंख बजा बजा बहुत लाउड था, यहां का तो ऐसा शंख था पांडवों की साइड का कि अंडे भी हिल गए थे। कहते ये तो बहुत मतलब ये तो उतार हुए लोग। तो तभी जो है पांडवों की साइड से एक रथ आया और वो बिल्कुल ही घोंसले के सामने आकर खड़ा हो गया। अब ये दो लोग हैं, हमने बातचीत शुरू हो गई, कहते हैं तो भाई अब इसने कहा पता नहीं यार ये लोग शायद पहले मेरे अंडे घुस लेंगे, बाद में वो लोग बाकी जो बचे होंगे वो घुस लेंगे फिर करके। अब ये तो बेचारे चिड़िया जो है कहे मैं तो गई, मेरे तो अंडे तो गए। कहे देखो आप जो कोई भी हो मेरे अंडों को मत मारो, मेरे अंडों की रक्षा करो, देखो मेरे अंडे नहीं टूटने की, मेरे छोड़ दो इनको, छोड़ दो मेरे अंडों को। पर इनमें जो है ना 45 मिनट बात चल रही है, देखा भी चिड़िया क्या, चिड़िया ने कहा तो भाई सुनना तो है नहीं, ची 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 करने को फायदा तो है नहीं, वो फायदा नहीं है। उसके बाद जो है फिर ये रथ वापस चला गया, कहते आप तो भाई गए, तो अंडों को बोल दिया ठीक है जय श्री राधे, कहते उड़ गए। और जब चिड़िया उड़ गई तो उसके बाद जो है अब युद्ध शुरू हो गया। अब चिड़िया जो है पेड़ पर आया, कहीं बस अब जो होना है सो होना है, क्या करेंगे आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही है, तो जब युद्ध हुआ तो भगवान ने अर्जुन का, अर्जुन ये जो हाथी है ना, हाथी में जो घंटा लटक रहा है, इस घंटे को 3 बार। तो अर्जुन ने कहा मतलब हाथी को नहीं मारना, उसे बैठे सैनिक को नहीं मारना, घंटे को मारना। कह रहे नहीं नहीं, अरे भगवद गीता के बारे में बोल दिया था, करिष्ये वचनम था, वो बोल दिया था मैंने यार, ठीक है नो कैलकुलेशन नो कैलकुलेशन, ठीक है ठीक। तो 3 बार जैसे 3 मारा तो वो जो घंटा था वो सीधा चिड़िया के घोंसले के ऊपर आ गया, और बल्कि अंदर थोड़ा धस गया, भारी सारा घंटा था वो, ठीक है। अब वो जो है अब चिड़िया के घोंसले के चार आ रहे हैं घंटा, और जितने सैनिक क्या होंगे खून बह रहे हैं, गरम गरम खून बह रहा है, गरम होता है ना, गरम खून है ऐसा, ऐसे मरेगा तो गरम खून ही होगा। अब गरम खून से क्या अंदर एकदम टेम्परेचर रेगुलेट हो गया। अब क्या 18 दिन युद्ध चला ये वो, लेकिन अंडो कुछ नहीं हुआ। आखिरी दिन अश्वत्थामा जो था, अब होता है अश्वत्थामा लास्ट पार्ट ऑफ महाभारत है ना, वो जब रथ से आया तो रथ का जो उसका पहिए का जो एक्सल होता है वो इस घंटे को जो है टकराया और निकल गया, रथ आगे निकल गया, तो घंटा ऐसे हो गया। अगर घंटा ऐसे हो गया तो अंदर से चिंग 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 करके बच्चे निकले। अब वो चुड़िया थी, चुड़िया ने कहा अरे ये कहां से आवाज आ रही है, देखा ये तो वही जगह है जहां उसने अंडे दिए, देखा ये घंटा है, घंटे के अंदर से निकल रहे बच्चे। और फिर जो है वो बहुत खुश हो गई, मेरे मेरे बच्चे बच गए, मेरे बच्चे बच गए। अब ये चिड़िया मुझे को नहीं पता था इसने प्रार्थना की तो किससे की है, कृष्ण से प्रार्थना की है, और हिंदी भाषा में नहीं की, ना संस्कृत में की, ना बंगाली में, इसने अपनी चींची ची वाली भाषा में की कि मेरे अंडों को क्या होगा, और कृष्ण ने रक्षा की है। तो भगवान जो है वो रक्षा करने वाले हैं, भक्तों की कब कैसे रक्षा करेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी ये भक्त की पिटाई करके उसकी रक्षा करते हैं, ये भी रक्षा करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि भगवान जो हमेशा बोले अरे मेरा बच्चा मेरा लड्डू मेरे बर्फी मेरे कलाकंद अरे अरे, कृष्ण हमेशा ऐसे रक्षा नहीं करते, ये कभी कभी धुलाई पिटाई करके रक्षा करते हैं वास्तव में। तो कृष्ण कब किसकी कैसे रक्षा करने वाले हैं ये हमारे 1.5 किलो के फलूदे के परे के बाद, ये फलूदे में दम नहीं है इतना, आप कुल्फी फलूदा खा सकते, दैट्स इट। ये फलूदे की औकात भी उतनी ही है भगवान को समझने की। जैसे मैं एक बार आपको बता दें कि लेफ्ट पार्ट है राइट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसे बुद्धि से भला हम कृष्ण को क्या समझेंगे कि ना तो इसमें कुछ राइट है ना इसमें कुछ लेफ्ट है, क्या करेंगे। तो ऐसी बुद्धि से भगवान कृष्ण की जो रक्षा के प्लान है हम नहीं समझ सकते। तब भगवान जो है भक्ति रक्षा कैसे करने वाले, ये छल से भी रक्षा करते हैं, ये युद्ध करके भी रक्षा करते हैं। छल से कैसे रक्षा की, छल से रक्षा की, जब विश्व पितामह जो थे उन पे शक था दुर्योधन को कि ना क्योंकि इनमें स्नेह है पांडवों के प्रति, तो ये उतने ज्यादा वेग के साथ ही लड़ते स्नेह है इनका। तो उन्हें टॉन्ट मारा भीष्म पितामह को कि आपके हृदय में मतलब प्यार है उन लोगों के लिए, इसलिए आप अपने अपना जो कर्तव्य है युद्ध लड़ने का वो ठीक से नहीं निभा रहे आप। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है मैं मारूंगा, ठीक है मैं जो है मारूंगा, और ये पांच तीर है, ये पांच पांडवों के नाम के तीर है, मारूंगा। ठीक है, दुर्योधन सुपर इंटेलिजेंट कहते हैं भाई ये भीष्म पितामह का मन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खेल हो सकता है, चीटिंग दोनों तरफ से चल रही है, इसीलिए कहते हैं ठीक है ये पांचों तीर आप मेरे को दे दीजिए, ठीक है ना, कल मैं आपको दे दूंगा। स्मार्ट बॉय दुर्योधन, लेकिन स्मार्टेस्ट कौन? कृष्णा। तो कृष्ण अब ये जो है पांडव पार्टी में सबको पता लगा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, यानी कल तो भाई आखिरी दिन है, और भीष्म पितामह ने अगर प्रतिज्ञा ली है तो फिर तो क्या करें, एक तो शुद्ध भक्त और ऐसे योद्धा की वजह से परशुराम जी को हरा दें, उनका तो पराक्रम क्या है। जैसे उनको बताया गया तिमिंगला, बताया गया तिमिंगला, तिमी नाम की जो मछली होती है उसकी डायमेंशन होती है 800 मील बाय 800 मील, तिमी नाम की, ऐसी तिमी नाम की मछली को जो गले में रहती है उसको तिमिंगला, इससे कंपेयर किया गया भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह तिमिंगला कि तिमी नाम की जो मछली है जो 800 मील बाय 800 मील की है, ऐसी मछली को अपने गला में रखने वाली तिमिंगला, ये है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह से रक्षा करने वाले कैसे करेंगे? तो कृष्ण जो है, तो कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम ऐसा करो भीष्म पितामह से आशीर्वाद मांगने के लिए जाओ, लेकिन जाना तुमने सैंडल उतार के जाना, अपने जूतियां उतार के जाना, पायल वगैरह उतार देना, ऐसे करके जाना। ठीक है, तो जा रही थी तो उठा उठा ली एक हाथ में सैंडल पाया ली थी और ये ऐसे करके जो है गई, और गई अपने सीधे प्रवेश किया, सीधे प्रणाम कर दिया। प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने देखा, अरे किसी माता जी ने प्रणाम किया, किसी स्त्री ने प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्य अभिभाव, उठी बहुत बहुत धन्यवाद भीष्म पितामह। अच्छा द्रौपदी तो तुम कैसे आए, मतलब मुझे पता नहीं लगा कि तुम कैसे, और ये तुम्हारे सैंडल तुम्हारे हाथ में, पायल तुम्हारे हाथ में, ये क्या चक्कर है, ये तुम किसने एडवाइस किया था इस तरह से मेरे यहां आने के लिए, किसने बताया? हालांकि मुझे 100% श्योर है कौन व्यक्ति है, लेकिन तुम बताओ कि किसने किया, कि थे ऑब्वियसली कृष्णा। ये कृष्ण बिना ही इज सच अ ट्रिकी गॉड, कहते अब आपने मुझे सौभाग्यवती का मुझे आशीर्वाद आपने दे दिया है, यहां सौभाग्यवती मतलब आपके पति, अपने पति, अपने पति के साथ तुम जीवित रहो, ये सौभाग्यवती होता है, सौभाग्यवती भाव। अब कल मारना भी और आज आशीर्वाद भी दे दिया, मार आप कैसे, बड़ा दुविधा। अब वो तीर भी मिल रहे हैं वहां पर, कहते वहां पर अर्जुन को भेज दिया, अर्जुन वहां भेज दिया, अर्जुन ने जब खेमे में आए कैंप, अब कोई अगर अतिथि आता है तो अतिथि का सत्कार करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। यहां देखिए दुर्योधन की मोरालिटी देखिए, दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन आज तुम जो मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो, बस एक चीज का डर था कि ना तीर ना मांगे, तीन नाम होंगे बस, कहता तुम्हें इंद्रप्रस्थ चाहिए मैं इंद्रप्रस्थ भी दे दूंगा तुम्हें, वो पता था अगर तीर रहेंगे तो इंद्रप्रस्थ वापस आ जाएगा, कहते जो मांगना है मांगो, उसको हिंट भी नहीं था कि क्या होने वाला है। अर्जुन ने कहा मुझे पांच तीर है ना वो दे दो। सो कृष्णा द सुप्रीम प्रोटेक्टर, ये भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं भगवान। ऐसे ही अर्जुन के जैसे युद्ध की बात आती है, युद्ध में भी रक्षा की, छल से भी रक्षा करते हैं, वाणी से रक्षा करते हैं, वैसे युद्ध में भी रक्षा की अर्जुन की, ये जैमिनी महाभारत में कथा आती है, जैमिनी महाभारत के महाभारत है जिसमें सिर्फ वीर रस है। तो चंद्रभा नाम का एक बहुत ही जबरदस्त योद्धा, ऐसा योद्धा मतलब कोई ठिकाने चंद्रभा के आगे, तो उसने अर्जुन को ललकारा। और भगवान कभी कभी क्या करते हैं अपने भक्तों ना एक्सपोज कराने के लिए कि तेरे से भी ज्यादा ऊंची भक्ति औरों की भी है, तो भगवान भी दिव्य खेल करते हैं। तो ये चंद्रमा नाम का योद्धा है, ये भगवान कृष्ण का भक्त सॉलिड वाला भक्त, तो इसने अर्जुन को ललकारा। तो अर्जुन ने जब इनकी ललकार सुनी तो भगवान, तो अर्जुन ने कहा ठीक है चंद्रमान हमने तो नाम भी नहीं सुना, आए थे कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम। तो ने कहा प्रभु एक बार गीता फिर से सुना दो, अभी लड़ाई करनी है ना। भगवान ने कहा हर बार गीता नहीं सुनाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होता है, जब भी तुम मतलब गीता सुननी है। वैसे अर्जुन बहुत बार गीता सुन चुके हैं, हम तो एक ही बार गीता जो जानते हैं, अर्जुन हैज हर्ड मेनी टाइम्स। जैसे लोगों को कुछ सुनना होता है, कोई गीत सुनना होता है, तो आपने कान में एमपी3 प्लेयर लगा लेते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड बॉलीवुड सुनते हैं, पर अर्जुन को जब भी सॉन्ग सुनना होता है कृष्णा गुरु, वो गीत सुना दो आपको, जाना भगवत गीत, वो गीत सुना दो। तो भगवान ने कहा देखो अभी तो चंद्रमान आया हुआ, उससे लड़ाई झगड़ लो। अरे अरे चंद्रमान को तो आराम से हरा दूंगा मैं, कोई समस्या नहीं। तो चंद्रमान ने जब ललकारा तो फिर अर्जुन भी ललकार को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। तो अर्जुन ने जो है तीर फेंके और वहां चंद्रमान ने भी तीर फेंके, और जितने तीर अर्जुन ने मारे सारे तीरों को छितर छितर कर लग गए चंद्रमान ने। अच्छा ज्यादा पावर, कोई बात नहीं हमारे पास ज्यादा पावर है। तो उसके बाद अर्जुन ने निकाला ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र निकाल के फेंका, ब्रह्मास्त्र काट दिया चंद्रमान ने। क्या भक्ति है चंद्रमान की, ब्रह्मास्त्र काट दिया। अच्छा स्मार्ट बॉय, कोई बात नहीं हमारे पास और बहुत है, हमारे पास पशुपातस्त्र है, शिव जी का अस्त्र पशुपातस्त्र है। उसका आह्वान किया और वो फेंका, जब वो फेंका चंद्रमान ने पशुपात अस्त्र भी काट दिया। क्या जबरदस्त भक्ति, कहते अच्छा पशुपात अस्त्र भी काट दिया। इसके बाद लेके आया नारायण अस्त्र, नारायण अस्त्र को किसने काटा, अस्त्र कभी नहीं काटा नारायण अस्त्र। और नारायण अस्त्र का आह्वान किया, नारायण अस्त्र फेंका, चंद्रभान ने नारायण अस्त्र काट दिया। अब पसीने छूटे अर्जुन के, कहते भाई ये कौन आ गया आज, ये कौन आ गया जो कि नारायण अस्त्र काट दिया। उसके बाद श्री राम का अस्त्र निकाला, राम बाण, कहते हैं तो राम बाण जी, राम बाण कभी नहीं छूटा है ना, अचूक राम बाण का आह्वान किया और राम बाण छूटा। अब चंद्रभान की भक्ति क्या भक्ति है कि श्री राम ने भक्ति को स्वीकार किया और राम बाण भी कट गया। अब तो इतने पसीने हो गए कि कवच भी गीला गीला हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे। कहते कृष्ण क्या करना है अभी, कहता तुम भी प्रतिज्ञा लेते हो कि चंद्रभान अरे तू है क्या, मैं अर्जुन, अच्छा ये दे आ गए चंद्रभान संभाल प्रभु कृष्णा, अब आप भी करो कुछ। कहते ठीक है, अब जनार्दन अस्त्र दिया उसका भगवान, दिया अपना अस्त्र जनार्दन अस्त्र। भगवान ने कहा जनार्दन अस्त्र तो है ही है लेकिन इसकी भक्ति ऐसी है जनार्दन अस्त्र भी काट दे, इसीलिए इस जनार्दन अस्त्र के आगे मैं बैठ के जाऊं। उसके बाद भगवान बैठे जनार्दन अस्त्र के आगे और फिर वो छोड़ा अर्जुन ने और जनार्दन अस्त्र भी काट दिया चंद्रभान ने। लेकिन जब कटा तो उसका लोअर हाफ तो नीचे गिर गया, और लोअर हाफ नीचे गिरा और जो ऊपर का हाफ था वो चंद्रभान की ओर बढ़ गया, और चंद्रभान का जो गला कटा, और चंद्रभान का जब गला कटा तो चंद्रभान का जो सर है जो वो जमीन पे रोल हो रहा है तो उसके मुख से जो है कृष्ण के नाम लग रहे, हे कृष्ण हे गोपीनाथ हे श्याम सुंदर हे नंदन नंदन कृष्ण, और जो कटा हुआ सर है वो भी कृष्ण को देख रहा है और निहार रहा है कृष्ण। अब ये जब देखा अर्जुन ने तो ही निहाल हुआ कि भाई ऐसी भक्ति कमाल की भक्ति है कि सर कटा है वो कटे हुए सर से कृष्ण का नाम, शुद्ध नाम हमारा जुड़ा हुआ सर से नहीं निकलता कृष्ण का नाम ना। और चंद्रभान की ऐसी भक्ति, और भगवान ने अपना उनका तीर कटा तो ये जो नीचे गया भगवान ने नमन किया उसकी भक्ति को, चंद्रभान की ऐसी गहरी तीव्र भक्ति थी भगवान के प्रति। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन की भी रक्षा की, चंद्रभान से रक्षा की, और यहां पर जो हम देख रहे हैं यहां पर भी रक्षा कर रहे हैं भगवान, तो द्रौपदी की रक्षा की, चंद्रभान से रक्षा की। तो इस प्रकार से देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जैसे ही आह्वान किया भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान हमेशा तैयार है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, हमेशा तैयार बैठे हैं, प्रोवाइडेड हम भगवान की ओर देखें, एक बार उनकी शरण में जाना तो स्वीकार करें। भगवान इमीजिएटली तैयार बैठे, इमीजिएटली, ऐसा नहीं टाइम लगेगा उनको वैकुंठ से नीचे आते आते ब्रह्म लोग ये लोग वो लोग करते करते ढूंढने कहां पर है एड्रेस क्या पंजाबी कहां पड़ते पंजाबी क्लब के सामने आते, इमीजिएट तुरंत आते हैं भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत तुरंत। इसका एक्सपीरियंस मेरे को भी हुआ था जब हम फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज के, तो हमारे रैगिंग होने वाली थी, तो क्या हुआ हमारे फर्स्ट जितने भी सीनियर थे उन्होंने हम फर्स्ट ईयर वालों को बुला लिया, अब हमको लेके कॉलेज के बाहर, अब कॉलेज के बाहर तो क्या होने वाला है उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो उस वक्त हम सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया और हमसे कुछ ऐसा कराने वाला था जो कि बताया नहीं जा सकता। उस वक्त मैंने बड़े ही हृदय से बोल दिया श्री कृष्ण चैतन्य, That's it, एक बार। तभी जो है कॉलेज की सारी फैकल्टी वहां के गार्ड सिक्योरिटी सब अपनी गाड़ी में जो है आ गए, कोई गाड़ी में कोई जिप्सी में कोई बुलेट में डू 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 सब, और वो सारे सारे भाग गए और उसके बाद से कभी रैगिंग हुई नहीं। तुरंत रक्षा करते भगवान, तुरंत रक्षा करते हैं भगवान, तो एवरीडे लाइफ में। अब लेकिन यह है कि रक्षा करने के भगवान के स्टाइल अलग अलग है, कभी कभी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन इच्छा हमारी तुरंत पूरी नहीं होती, कहते यार ये रक्षा तो की नहीं भगवान ने, भगवान से प्रार्थना की राधे रमन जी रक्षा करो, ये रक्षा किया हमने मेरी, रक्षा किया भगवान ने मेरी, रक्षा किया भगवान ने। तो भगवान जो है रक्षा करते हैं, लेकिन रक्षा करने के उनके प्लान है। होता क्या है कि हमें भगवान की शक्ति में तो पूरा विश्वास है लेकिन भगवान की बुद्धि पे विश्वास नहीं है, हमें बुद्धि पे अपनी विश्वास है, शक्ति पे उनकी विश्वास है। कह रहे प्रभु प्लान हमारे हो, शक्ति आपकी हो, शक्तियां हमारी, देखो आप शक्ति तो आप ही बात, लेकिन प्लान क्या आपके पास ना, यू आर वेरी सिंपल, आपको इतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि मेरे पास है, आपको बुद्धि जो भी मेरे से आई है ना, तो इसीलिए क्या है प्लान हमारे होने चाहिए और शक्ति भी आपके, तो हे प्रभु प्लान ये है, प्लान ए प्लान बी प्लान सी, इस तरह से बस आप कर दो, बस सब कुछ आप ही करने वाले भगवान ये ना, प्लान चलेगा प्लान सी प्लान ए प्लान बी। अच्छा, और ऐसे पूछता कि भगवान के ना प्लान ए ना प्लान बी ना प्लान सी, प्लान अल्फा प्लान बीटा प्लान गामा, एकदम ही अलग प्लान, एकदम ही अलग प्लान। ऐसे एक भक्त था, उसने माता पिता से बोला था कि ना मेरी शादी मैं करूंगा तो भक्त से करूंगा। माता पिता ने कहा बेटा तू देख बनिया आदमी है, तेरे को बनियों में ही शादी करनी है, हमने अगरवाल लड़की ढूंढ के रखी तेरे को उससे शादी करनी है। मैंने कहा देखो मैं शादी करूंगा तो मैं भक्त से ही करूंगा, मैं भक्त के बिना किसी शादी नहीं करूंगा। अरे बहुत क्या चलता, तो एक खूब मतलब वो हल्ला पीटा खूब घर में हो गया अच्छे से, अब हो गया तो फिर उन्होंने दिखा कि लड़की है आज, उसके बाद जा रहे हैं हम, देखो जा रहे हैं लड़की पसंद करनी है, कोई भगत भगत नहीं है, ठीक है सुने चला गए लड़की को दिखाने के लिए चले गए। अच्छा ठीक है मैं लड़की से बात करना चाहता हूं, तो लड़की को बोला देखो मैं तुमको साफ साफ बताना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ छुपाने नहीं चाहता, मैं हरे कृष्ण डिवोटी हूं, मैं रोज 16 माला जप करता हूं, मैं 4 नियम का पालन करता हूं, और शादी के बाद कोई हनीमून एक्सपेक्ट मत करना, मैं ना कुल्लू मनाली जाऊंगा ना ऊटी जाऊंगा ना मैं कहीं जाने वाला हूं, ना मैं स्विट्जरलैंड जाने वाला ना मैं मॉरिशस जाने वाला हूं, मैं सिर्फ मायापुर जाता हूं और मैं वृंदावन जाता हूं। और मैं और कोई किताब नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ भगवद गीता पढ़ता हूं भागवतम पढ़ता हूं, ठीक है ये मैं हूं, अब शादी करनी है तो बता। तो लड़की ने कहा वाहियात आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्ता मांगने की, तू इतना पंडित गिरी करता है इतना पंडित बनता है तू, अबे तेरे में दम है तो जाके मंदिर में ब्रह्मचारी बनके दिखा ना, दम है तेरे में। तो लड़के ने कहा तू क्या कहना चाहती है, तू क्या कहना चाहती है, मतलब मैं डरता हूं कि मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। अब देख कल सुबह इस्कॉन पंजाबी बाग में तेरे को मैं नहीं मिला सर मुड़ा के, देख हो गया। तो प्लान चलना था कि भक्त से शादी करेगा या अभक्त से शादी करेगा, बनिए से करेगा या गौड़िया से करेगा, अब ये अरे प्लान कुछ और ब्रह्मचारी होने। तो प्लान जो है वो भी इन्हीं के चलते हैं, शक्ति भी इन्हीं की चलती है, और जो इस दोनों बातों को स्वीकार कर लेता है उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। वही बुद्धिमान होती है कि ठाकुर जी अगर मैंने आपके प्लान नहीं स्वीकार किए, अगर मैंने आपकी शक्ति को स्वीकार नहीं किया तो ठाकुर के बजाय मिलेगी ठोकर। तो इसीलिए यह समझ आ रही है कि रक्षा करने वाले वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही है वास्तव में, तो इस बात को समझना। और हमारे जीवन में जितने भी अनर्थ है वास्तव में वो निकालने वाले वास्तव में कृष्ण ही होते हैं, वो कृष्ण ही है। अब जैसे कि यहां पर हुआ क्या, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दो भक्तों की रक्षा की, दो तरह के भक्तों की, एक गरुड़ जी की भी रक्षा की है जिनके खुद के जो उनके खुद के वाहन है, जब काल नेमी ने उनके ऊपर वार किया गरुड़ के ऊपर, भगवान ने गरुड़ की भी रक्षा की और उसी अस्त्र से उस व्यक्ति को नष्ट कर दिया काल नेमी ने। और दूसरी तरफ जो है देवताओं उनकी भी रक्षा की है, तो भगवान के जो नित्य सिद्ध वैष्णव हैं उनकी भी रक्षा भगवान करते हैं, और जो एक साधक है भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं, जो उनके खुद के वाहन है भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं। जैसे गरुड़ को भी एक बार ये थोड़ा भाव आ गया था लीला में कि भाई भगवान को उड़ाने वाला तो मैं, अगर हम भगवान को ना उड़ाएं तो भगवान टाइम से पहुंच ही ना पाए। तो भगवान भाव जान गए कि आज भाव खरा भाई। तो एक दिन भगवान ने कि अपना पांव जो है एक पांव बस गरुड़ के ऊपर रखे, कहते चलो गरुड़ चले। अब गरुड़ फड़फड़ाए एक मिलीमीटर नहीं हिल पाया गरुड़, कहता गरुड़ बहुत लेट हो रहा है चलो ना। गरुड़ पूरी जान लगाई, कहते क्या हुआ, कहते प्रभु सॉरी गलती हो गई, हम भी चलते हैं तो आपके दम पे चलते हैं, तो वास्तव हमारी गाड़ी चल रही है अगर तो चलती है तो भगवान की इच्छा से भगवान की कृपा से चलती है। तो इसीलिए तो यहां पर हम देखते हैं कि भगवान जो है रक्षा करने वाले हैं अपने निजी भक्तों की भी, और जो भी निजी नहीं हुए हैं भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं। देवी देवताओं की भी रक्षा की और गरुड़ जी की भी रक्षा की भगवान ने। तो देवताओं की यहां पर दो तरफा परीक्षा हुई। पहली परीक्षा जो हुई जिसमें कि बलि महाराज ने जितने भी शस्त्र मारे सबको मतलब इंद्र ने एकदम नेत्राभूत कर दिया, आराम से हरा दिया। उसके बाद बलि महाराज ने एक अलग टैक्टिक चली, मायामय, मायामय जो शक्ति है उनकी उसका इस्तेमाल करके बड़ा सा पहाड़ बनाया और पहाड़ से सर्प गिर रहे हैं, राक्षस गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं और फिर जितने भी देवी देवता थे वो भाव भी हो गए। तो पहले जो था पहले एक आसान टेस्टिंग हुई, उसके बाद से ज्यादा बड़ी टेस्टिंग हुई। उसी तरह से भक्त के जीवन में भी टेस्टिंग होती है। एक है हमारी पब्लिक सक्सेस, उसको हम अक्सर सक्सेसफुल बोलते हैं, ही इज सच अ सक्सेसफुल प्रीचर माय गॉड, ही इज सच अ वेल्दी डिवोटी माय गॉड, ये कितने फेमस हो गए पता है, इनके यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो गए माय गॉड, पता है इसका डिजायर ड्रीम इनका फोल्डर है, उसमें 25 फोल्डर है उसके अंदर माय गॉड, पता है वो मटका सिल्क पहन के लेक्चर देते हैं माय गॉड, पता है ही इज नाउ सो फेमस माय गॉड, पता है उनको माला पहनाई गई थी माय गॉड, सक्सेस। लेकिन असली सक्सेस है प्राइवेट सक्सेस। हमारी पब्लिक सक्सेस जो है वो होती है एक्सटर्नल सक्सेस, जो कि आसान होती है, थोड़ा सा संघर्ष करें थोड़ा सा प्रयास करें आराम से मिल जाती है, उसमें रिवॉर्ड मिलेंगे इनाम मिलेंगे बहुत अच्छी बात है। और जो है अगर कोई व्यक्ति बड़ा करिश्मेटिक है बड़ा स्किलफुल है उसको भारी सक्सेस मिलना बड़ा आसान होता है, लेकिन असली सक्सेस होती है प्राइवेट सक्सेस, यानी कि अंदर की जंग। बाहर की जंग को जीतना आसान होता है, अंदर की जंग को जीतना मुश्किल होता है, और जो अंदर की जंग को जीत लेता है उसके लिए बाहर की जंग मैटर नहीं करती। लेकिन हम असली अक्सर जो है जंग में हार जाते हैं क्योंकि हमको जंग लगा हुआ है, जिसको जंग लगा होता है वो जंग में हारेगा हारेगा। तो हमारी जो अंदर की जो हमारी जो वास्तविक सक्सेस है वो है इंटरनल सक्सेस, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके ऊपर जो विजय है वो असली विजय है वास्तव में। बाहर जो है मेरे किसी व्यक्ति की जो है कितने फॉलोअर्स हैं, कितना धन है, कितना यश है, कितनी खूबसूरती है, हाँ कितना वैराग्य है, कितना ज्ञान है, ये जो है इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइवेट विक्ट्री। प्राइवेट विक्ट्री इज अ रियल सक्सेस, और प्राइवेट विक्ट्री आती है भगवान की शरण में जा करके। भगवान की शरण में जाए बिना प्राइवेट विक्ट्री नहीं मिलने वाली, बाहर की विक्ट्री जो है वो प्राप्त करना आसान है। तो इसीलिए ये दोहरी माया आती है भक्ति जीवन में कि जब और कोई भी इस सफलता को देखने वाला नहीं है, जो आंतरिक सफलता होती है उसको देखने वाले से तीन लोग ही हैं, एक हम खुद, दूसरी माया और तीसरे कृष्ण। सिर्फ ये तीन लोग ही हैं जो कि सफलता को देते हैं, बाहर और कोई सफलता को नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसको लेकर कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा, कोई शील्ड नहीं दी जाएगी, कोई MP3 प्लेयर नहीं दिया जाएगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी विजय वो यही है, हमारी जो आंतरिक संघर्ष के ऊपर विजय है यही असली विजय है। लेकिन ये ज्यादा सूक्ष्म है, ये ज्यादा सूक्ष्म है और इसमें हारने की ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हारने पर भी ना आनंद आता है। द एलिमेंट ऑफ प्लेजर इज द कॉज ऑफ लूजिंग द बैटल नॉट बी विक्टोरियस इन द बैटल। ये व्यक्ति का बैटल में हारता तो भी क्या आनंद मिलेगा उसको, बहुत ही आनंद मिलेगा। अगर कोई काम आसान को अगर पूरा करने की कोशिश करता आनंद होता है उसको, बहुत ही इच्छा पूरी हुई उसकी। तो एलिमेंट ऑफ प्लेजर जो है वो जो है बहुत बड़ी परीक्षा है, यानी भौतिक भोगों में जो आनंद है जब वो लेता है व्यक्ति उसके बार 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 बार, इससे छूटना ये वास्तव में असली विजय है। तो व्यक्ति जो इस विजय को प्राप्त कर लेता है उसके लिए बाहर जो है विजय प्राप्त करना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो तो देखना चाहिए उसकी नींव कितनी गहरी है। उस तरह से जितने ज्यादा हम अंदर से आंतरिक रूप से हम आध्यात्मिकता में जितने ज्यादा सुदृढ़ होंगे उतने ज्यादा हमारे बाहर की जंग को जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो कई लोग हैं जो बाहर की जंग को जीतने में तो बड़ा विश्वास रखते हैं, यानी कि बाहर की सफलताएं, सक्सेस, यश, इस पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन आंतरिक विजय के ऊपर ध्यान नहीं देते। अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करनी है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने कामुकता के ऊपर विजय प्राप्त करनी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करनी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, भक्तों के साथ मेरे संबंध कैसे होने चाहिए इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो जब हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते और बाहर की सक्सेस के ऊपर ध्यान देते हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पतझड़ की तरह गिर सकता है, खत्म हो सकता है वास्तव में। तो इसीलिए यहां पर दो प्रकार की जो परीक्षाएं हुई वो थी, एक तो थी जो बड़ी ग्रॉस थी, तीर चले, तीर काट दिए इधर, वेरी सिंपल। पर उसमें जब माया शक्ति का जब इल्यूशन जब आया, इल्यूशन जो है उसको उसमें जो है जितने भी देवता थे वो उद्विग्न हो गए। लेकिन यहां बड़ा अच्छी एनालॉजी दी जा रही है कि जिस प्रकार से हम जग जाते हैं सपने से तो सपने का जो मोह है वो चला जाता है। उस तरह से भगवान श्री कृष्ण के आने के बाद होता क्या है कि जो स्वप्न वाला जो हमारा संसार जो हम बना के रखते हैं जिसके द्वारा हम भ्रमित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इमीजिएटली ये ठीक हो जाता है। इमीजिएटली कि मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा था मैं। ऐसे हमारे कई भक्त जो रेगुलरली श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं उन्होंने अपना अनुभव बताया कि अगर मैं कभी भी दुखी होता हूं और मैं भागवतम रोज 50 श्लोक पढ़ता हूं तो मेरे जितने भी दुख हैं वो ऐसे गायब होते हैं, कब गायब होते हैं पता नहीं लगता। That's okay. तो इसीलिए वास्तव में जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे ना हम ये आंतरिक युद्ध इससे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्जुन में देखा जाए अर्जुन को बाहरी सक्सेस की उनके पास सब कुछ था, उनके पास स्किल्स है, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अंदर से कमजोर हो गए। तो आंतरिक शक्ति फिर देने वाले कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण की वाणी जो भगवद गीता है तो अर्जुन को आंतरिक शक्ति दी, आंतरिक शक्ति आई तो बाहर का युद्ध तो भगवान ने आराम से संभाल लिया। तो इसीलिए वास्तव में अगर विजय प्राप्त होने चाहे आंतरिक या बाहर की वो सब कृष्ण के द्वारा ही है। जैसे युद्ध जब समाप्त हुआ था तो रूल ये होता है, रूल ये होता है कि पहले जो है सारथी उतरता है और फिर वो मेजबानी करता है कि आइए जो योद्धा है उसको उतारता है। लेकिन युद्ध समाप्त हो गया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा अर्जुन उतरो, अरे अरे आज कैलकुलेशन उल्टी, मैं पहले सारथी उतरना चाहिए, सारथी उतरता है और फिर कहता है आइए महाराज, आइए योद्धा जी, आइए नीचे उतरिए। नहीं कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम उतरो, कहता अच्छा उतरिए, कहता आप थोड़ा दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, ठीक है ओके करिष्ये वचनं तव। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अर्जुन के रथ से उतरे सारा रथ मतलब ब्लास्ट उड़ गया, मतलब उसके तो मतलब मॉलिक्यूल भी नहीं बचे, ऐसा हो गया एकदम खत्म। क्योंकि युद्ध के दौरान इतनी मिसाइल्स गिरी थी अर्जुन के ऊपर पर कृष्ण ने जो है सबको संभाल रखा था उसको। तो कृष्ण थे तो रथ था, कृष्ण जैसे ही उतरे रथ गया, रथ गया। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम पहले उतर जाओ, अगर भगवान पहले उतर जाते तो रथ और रथ के साथ अर्जुन भी गए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन पहले तुम उधर जाओ। इस बात का तो भनक भी नहीं लगी अर्जुन को कि मिसाइलें कितना अटैक हुए उनके ऊपर, उनको पता भी नहीं लगा और युद्ध लड़ रहे हैं, कर्ण को मारा, भीष्म पितामह, दिस दैट, ओ अच्छा। लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है जो रक्षा करने वाले हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमको दृष्टिगोचर नहीं होता, कृष्ण ही लेकिन रक्षा करते हैं। इस बात का गहरा विश्वास होना चाहिए वास्तव में। ओके हम ये भी विराम देंगे। श्री प्रभुपाद की जय। किसी आपको प्रश्न है? यस प्रभु
थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरा एक डाउट है कि हमारा दिमाग तो चलता ही नहीं है कहीं पे भी, तो हम कैसे एनालाइज कर लेंगे जो अभी आपने बताया कि ये भगवान का प्लान है या हमारी बुद्धि काम कर रही है।
तो कैसे पता करें कि हमारे भगवान का प्लान है या हमारी बुद्धि काम कर रही है? इसके लिए हमें वैष्णव दिया भगवान ने कि वैष्णव से जाकर पूछो, वो बताएंगे ये भगवान का प्लान है या आपका प्लान है। जैसे कि मान लो गर्मी का मौसम, रथ यात्रा निकल रही है, ठीक है हमको जाना है रोहिणी रथ यात्रा के लिए, गर्मी का मौसम है, सूर्यदेव व्यवस्थान बड़ी खुशी में निकले यहाँ जो भी रथ यात्रा में, ठीक है। तो आप सोचिए यार मैं गर्मी में जाऊं पर पसीने पसीने हो जाऊंगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अपने बेहोश हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, फिर दो हफ्ते सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा करता हूं, मैं ना आ रहा था तेरा, मैं नहीं जाना आज। वेरी कृष्ण कॉन्शियस था, है ना। तो अब ये विचार मन से आए हैं, परमात्मा से आया, अंदर से अंदर दोनों है, मन भी है परमात्मा भी। तो भक्ति पास जाएंगे, रविलोचन प्रभु मैं ना सोच रहा था कि रथ यात्रा में ना जाऊंगी ना, आज सूर्यदेव विवस्वान भी आए हुए रथ यात्रा के लिए, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ना आज मैं रथ यात्रा में ना जाऊं, आज ना मैं बैठ करके यहाँ पर कॉम्प्रेट्स भेजू मैं। हाउ इज दिस आइडिया, मैं सोच रहा था यहीं पर रहूं मैं और उसके बाद फिर जो है दो तीन घंटा सो जाऊं और फिर प्रसाद खाऊं और फिर सो जाऊं। ये अच्छा आइडिया नहीं है, मेरे को एक अंदर से अनुभूति हो रही थी। तो रेवल्यूशन टू जो है उसको दो चपेट मारेंगे उसको, मूर्ख मूर्खानंद वहां पर भगवान निकले हैं धूप में, हाँ, और केशव राय बोले इतनी मेहनत करके वहां पर खतरा होना की है, हाँ, और तुम यहां पर बैठोगे, काम चोर निकम्मे निठल्ले धरती पे बोल चल। तो हमारे कान मनोने वाले हैं वैष्णव, तो इसीलिए अंदर से अगर आवाज आए, पता नहीं किससे आई है, परमात्मा से आई, मन से आई, क्या करना चाहिए, वैष्णव से पूछना चाहिए, जो वैष्णव है वो हमें गाइड करेंगे कि देखो जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो इस तरह से हम कन्फर्मेशन ले सकते हैं, ओके। और कोई सवाल? किसी को सवाल है एक, किसी को सवाल है दो, किसी को सवाल है ढाई, पौने तीन, तीन। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भाई गौ प्रेमानंदे।